اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی محبتیں ہمارے اوپر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَن یُرِد اللہ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی اپنے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ ہو۔ تو آئیے شروع کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ڈی کیو 2023، دورہ قرآن 2023۔ آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 12 کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم سورۃ ہود شروع کر چکے تھے اور آج ہم اس میں سے اگلے نبی کا قصہ پڑھیں گے۔ ابھی تک جو پارہ کیا ہے، اگر اس پہ دو تین جملے بول دیں تو ہم نے اس پارے کا مین تھیم ابھی تک جو لیا وہ صحابہ کرام اور کسب حلال ہے، اور اس میں جو شخصیت ہمارے پاس اس سیشن کی ہے وہ حرام بن حزام ہے۔ چند باتیں ان کے بارے میں نوٹ کرواؤں گی سورۃ ہود کے اینڈ پہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج سورۃ یوسف شروع بھی کریں گے اور اللہ کی رحمت سے پوری بھی کریں گے۔ تو اس کی شخصیت ہے مرثد بن مرثد رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے، اس کو اپنے مقام پہ اسی بارے کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس بارے کا، خاص طور پہ سورۃ ہود کا، اس میں آپ ایک چیز ضرور نوٹ کریے گا۔ پیچھے بھی گزر گیا لیکن پیچھے میں نے اس لیے نہیں بولا کہ آپ کے لیے ٹو مچ ہو جاتا ہے جب ایک ہی صورت سے اتنی مختلف چیزیں لینا، لیکن اب سے نوٹ کریے گا کہ متاع الغرور اور متاع حسنہ، پوری صورت ہود میں بار بار ان دونوں کا تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں جو دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مضامین کو اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاقی والاعمالی والاہوائی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، کس بات سے؟ برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ساری چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو آئیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت 50 سے 60۔ سورۃ ہود، ٹاپک ہے ہر چیز پر اللہ نگران ہے، اور حضرت نوح کا کافی طویل قصہ پڑھنے کے بعد ترتیب زمانی، یعنی آرڈر ایک کے بعد ایک جیسے آتا ہے، تو اس میں اگلی قوم جو تھی وہ قوم عاد تھی۔ ایک دور کے بچے ہوئے لوگ اگلے دور کے پکڑے ہوئے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے افسوسناک بات کہ وہ لوگ جو پچھلے عذاب سے بچ گئے لیکن وقت کے ساتھ ان کی نسلیں چونکہ اس پیغام کو نہیں لے سکیں، تو ان کا جو حال ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ یعنی کوئی نبی خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نومینیٹڈ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پیچھے حضرت نوح کا قصہ اور اس سے اگلی جتنی بھی قومیں ہیں، سب میں یہ کامن فیکٹر ہے کہ نبیوں کی دعوت بے لوس ہوتی تھی۔ اس کام پہ کوئی پیسے دے بھی نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے ہیں ہی نہیں۔ بینک کرپسی فائل ہو جائے ان آرگنائزیشنز کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو کچھ دینا چاہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ادھر اس نبی کے ذریعے آپ کو مجھے یہ بات دکھا دی، اور آپ نے دیکھا کہ دعوت کیا ہے؟ توحید۔ اس کے بغیر بیکار ہے، ہمیں اپنی امت پہ آج توحید پہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہماری توحید خراب ہے، اسی لیے باقی کام بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگتے ہیں۔ پھر کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت یعنی قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہو تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا ہی نہیں۔ یعنی ظواہر پرست ہوتے ہیں نا، یہ ظاہری معجزات، دلیلیں اور ایسی چکا چوند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बड़े छपट्टे में आ गया, यानी नाउज़ बिल्ला तेरे ऊपर हमारे बुतों की मार पड़ गई है। जैसे तू हर वक्त हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को बुरा कहता रहता है ना, इसलिए अब ये तेरे ऊपर हुआ। इस पे बल्कि हमें सहाबा की ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी आता है कि जब नबी सल्लम मक्का फ़तह करते हैं तो उसके बाद आपने हज़रत अली और उनके साथ कुछ लोगों को मिलाया और कहा कि आप मक्का के इर्द गिर्द जितनी भी कब्रें हैं उनको बराबर कर दो। जो दरगाहें थी, आस्ताने थे, जैसे आज की ज़ुबान में आप उसको मज़ार कह लीजिए, उन सब को प्लेन कर दो। लिहाजा सहाबा कराम मुख्तलिफ तरफ निकल गए और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। इतने में एक ऐसी जगह पे गए जिसको दरगाह बोलते हैं ना, आज भी हिंदू धर्म में लफ्ज़ दरगाह बोला जाता है। तो जब सहाबा में से कोई एक सहाबी उधर गए तो लोगों ने उनको डराया, कहने लगे पता तुम्हें इसमें काली देवी है, अगर इसको हाथ लगाओगे ना इसकी दरगाह या इसके मंदिर जब, तो वो तुम पे हमला करेगी। इन्होंने कहा अच्छा, एकदम मैं तो नहीं डरता किसी से, जाकर कुदाल मारा और एक दो कुदाल मारा ना, उसके बाद चीख मारी और बेहोश हो गए। लोगों ने कहा देखा 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 ना, हमारी देवी ने तुम्हें पकड़ लिया, उसने कह दिया ये कर दिया, उसके बाद ये कपड़े झाड़ के उठे, कह रहे मैं तो तुम्हें देख रहा था, मजाक कर रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और जब उन्होंने उस दरगाह को ख़त्म किया तो लोगों ने देखा एक काले रंग की चीज़ उड़ के ऊपर चली गई। नबी सल्लम ने फरमाया कि शैतान मायूस हो गया। खैर, उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह के सिवा इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अच्छा, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो, मेरा भरोसा सिर्फ उस ज़ात पर है यानी अल्लाह ताला, जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है, जितने भी पांव धरने वाले हैं सब की पेशानी वही थामे हुए है। क्या मतलब, उनके नसीब, उनका फैसला अल्लाह करता है, यानी तुम्हारे बुत किस्मतों का फैसला नहीं कर सकते, ये अल्लाह करता है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है, बस अगर तुम रूगरदानी करो तो करो, मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया। इसमें आपको बेनियाजी दिख रही है, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों को बड़ा बेनियाज होना चाहिए। लोग खुश हों, लोग नाराज़ ना हो जाएं, हाय लोग हमारा साथ ना छोड़ दें, इसको फाड़ के फेंक दीजिए, इसलिए कि दूसरों की नियाजमंदी में अल्लाह का दीन बदलने लगता है। मेरा रब तुम्हारे कायम मुकाम और लोगों को कर देगा और तुम इसका कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने खुद को और इसके मुसलमान साथियों को अपनी ख़ास रहमत से निजात अता फरमाई और हमने इन सब को सख्त अजाब से बचा लिया। ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और इसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म की ताबेदारी की। दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई और क़्यामत के दिन भी देख लो कौम आद ने अपने रब से कुफर किया, हूद की कौम आद पर दूरी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि अंबिया कराम के दौर में भी लोग भटक जाते थे, सामने वक्का नबी खड़ा है जो एक बैयीना होता था। हमारे नबी भी बैयीना थे और आपने इसमें भी बैयीना देखा होगा, आयत नंबर 53 में क्या आता है, माँ जी तो नबी बैयीना, तू तो कोई दलील ही नहीं लाया। हालांकि आप देखिए कि नबी का अपना वजूद कितनी बड़ी दलील होता है। तो क्या पता चला कि ये कौम तबाह हो गई। और मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर उस दौर में अखबार छपता तो बड़ी शह सुर्खी मेन हेडिंग होनी थी कि फलां कौम पूरी की पूरी तबाह हो गई। जाहिर है कि कुछ जलजला ही आया ना, हवाएं चली, जमीन हिली, कहीं तूफान आया, कहीं कुछ हुआ, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने काम करके रहता है। असल बात यह है कि बड़ी बड़ी ताकतें ये अपने अपने दौर की सुपर पावर्स थी। जब अल्लाह के नबियों के रास्ते में ये रुकावट बनते हैं और अब रोड़े अटकाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इनको पीछे करता है। और लफ्ज़ खुद में देखिए हिदायत छुपी हुई है। अल्लाह ने कौम आद की हिदायत के लिए जब खुद को उठाया, कौम में से थे, हर नबी अपनी कौम में से था, ताकि लाइक माइंडेड हो, मुहावरे एक हो, जुबान एक हो, कल्चर एक हो, एक दूसरे की नफ्सियात और जुबान समझ रहे हो, ताकि दीन का काम दुरुस्त हो। इससे पता चलता है कि हमेशा अपनी जुबान में बात सुन के मजा आता है। आज कई लोग सिर्फ इंग्लिश की बुक्स और इंग्लिश के लेक्चर इसलिए ले लेते हैं कि बच्चे सुनेंगे, मज़ा तो नहीं आता। जो आपकी अपनी लैंग्वेज है ठीक है, अगर आप वहाँ पले बड़े आपको इंग्लिश ही उर्दू लगने लगी तो और बात है। तो बहरहाल इसमें आपके मेरे लिए जो बहुत बड़ी बात है, अजनबी तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई हक का दाई, हक की तरफ बुलाने वाला आपके पास आ जाए तो उसकी कदर कीजिए। और एक सच्चे दाई दीन की सच्चाई को पहचानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ही खुद को सच्चा कह रहा है, तो आप और मैं क्या करें। नंबर एक, अपने मिशन में संजीदा हो, लिखिए ये बात। किसको चूज करूं, किसकी बात सुनूं, किसके साथ जुड़ूं, किसके साथ एफिलिएट हो जाऊं। नंबर एक, मिशन में संजीदा हूं। बहुत सारे लोग मुखलिस भी होते हैं, बहुत सारे लोगों में अल्लाह की रजा भी पाना होता है, लेकिन संजीदगी पूरी नहीं, फुल टाइम नहीं होते। उनका एक पार्ट टाइम बिजनेस कह लें या पार्ट टाइम नेकियों का एक काम है। दूसरी बात, उसकी बात मुदल्लल हो। दो रवायत। तीसरी चीज, हर किस्म की दुनियावी गरज से पाक हो। और चौथी चीज, जो कुछ कह रहा है वो ऐन हकीकत वाकई हो, एग्जेजुरेशन ना हो, झूठ सच ना हो। और अगली चीज, उसका पैगाम कायनात यानी यूनिवर्स से सिंकनाइज्ड हो। कुरान पढ़ाते हुए भी कायनात की बातों को पेश करके, कहीं साइंस की बातें कि नफी खल्क समावाती वलर्द करते हुए चल पड़े। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो उसको इख्तियार कर लीजिए। ऐसे शख्स को चूज़ कर लेना कामयाबी की शाहराह पे चलना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जब आप टीम बनाते हैं, किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं ना, अगर इस जगह, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि ये कितना बड़ा सेटअप है जहाँ हम बैठे हैं, मुझे पढ़ाने के साथ ये सब देखना हो, जो मैं भी हाथ खड़ा कर दूँ मैं नहीं कर सकती, तो क्या मेरे पढ़ाने की क्वालिटी डाउन नहीं होगी? बस ये याद रखिए कि टीम में काम बट जाता है और रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुद करूंगी, मैं ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, और मैंने ऐसे लोगों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बात समझ आई, अब आज वो दुआएं देते हैं। पढ़ाती भी खुद थी, घर भी खुद सेट करती थी, अपने घर में क्लास लेती थी, बाहर कोई आता था तो डोर भी खोलने जाती थी, और उसी क्लास के स्नैक्स भी खुद बनाती थी, बाद में चाय बनाने खुद किचन में जाती थी, और बाद में चीज़ें भी उठाती थी। तो फिर जिसम नहीं थकना, और आउटपुट क्या है? अब मुझे खुद बताइए ना, अगर बीच में फ़ोन सुनकर दूसरों को रास्ता भी बताना पड़े, और जब उनको बताया कि आप ये सारे काम कर लें लेकिन जो कोई काम और कर सकता है तो वो आप ना करें, काम बांटिए, डेलीगेट कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं वो काम कभी नहीं करूँगी जो आप कर सकते हैं, और वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी जो मैं आपसे अच्छा कर सकती हूँ। ज़िंदगी का असूल बनाए। अगर आपको दीन की खिदमत करनी है ना, तब ये नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही, मैं पहुंचा रही हूँ कि नहीं पहुंचा रही। लोग कहते बल्लू वन्नी वाला आया, एक सिस्टर थी, उन्होंने सबीलुल जन्नाह कोर्स शुरू किया, और शायद दूसरे ही पारे पे थे तो उनकी इतनी लंबी चौड़ी ईमेल आई, पता नहीं क्या था। खैर, वो जी मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और मैंने अब अमल किया, मैंने अपने घर में भी सबीलुल जन्नाह क्लास शुरू कर दी है, क्योंकि बल्लू गन्नी वाला हुआ आया। अल्लाह की बंदी, आपको तो सर्टिफिकेट में लिख देंगे कि आप अभी पढ़ाने के काबिल नहीं, क्या आप पढ़ा सकती हैं? और लोगों के एक से दूसरे सवाल को टैकल करती हैं, कहती फिर दीन की खिदमत कैसे करूँ? भाई दीन की खिदमत करो, पहले अपने आप को पढ़ाओ, खपो, उलझो, पहले अंदर तो उतारो। देखिए, मैं खाना खाऊं, वो खाना मेरे जिस्म में जाए, हजम हो, मेरे जिस्म में खून बने, एनर्जी बने, एक नेचुरल फिनोमिनन से गुजर के मुझे ग्लूकोज मिलेगी तो एनर्जी है। और खुदा ना खास्ता इधर खाऊं और उधर वॉमिट, इधर खाऊं तो उधर वॉमिट, क्या होगा? और नकाहत होती है, कभी औरतों को देखा करे बेचारियां कैसे नौजिया से जा रही होती हैं अगर अल्लाह ने खुशखबरी दी तो उसके बाद। ये तो सुनना, वो कहते हैं मैं आपका एक एक लफ्ज़ सुन के लिखती हूँ, बिलीव मी, ये देखे मैंने सफ़े भरे हैं, तो आप सुनेंगे और ओमिट कर देंगे। किसी का सुन के लिख के जाके ऑफर कर देना, ये बिल्कुल वॉमिट करना है, क़य करना होता है। पहले अपने ऊपर लाइए, पहले आपका जिस्म ढले, फिर आपके अंदर उतरे, फिर आपका अपना दिल उसको माने, फिर आपके अपने अमल में, तकवा में और इखलास में बढ़ता जाए, देखिए कितना काम आप करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इसको माना, अब उनसे काम संभल ही नहीं रहा, और जो कच्चा पक्का टूटा फूटा कर रहे थे, अब दिन ब दिन दर्दें बढ़ गई, कमजोरी बढ़ गई, दिमाग में ताकत नहीं रही, एक एक करके वो क्लासें टूट फूट गई। जिंदगी का असूल है, जिसको काम प्यारा है वो क्वालिटी देगा, जिसको नाम प्यारा, वो कहते जो मर्जी हो, आप में से कोई आलिम बैठा है, फाजिल बैठा है, मैं नहीं जगह छोड़ सकती क्योंकि मेरी नेकी है जी। और लोग क्या कहते हैं, मैं अपनी नेकी किसी को नहीं दूंगी। अल्लाह के बंदो, कभी काम करना नेकी तो कभी ना करना नेकी। साहबा ने खुदा भी अब खड़े होकर ये साबित कर दिया था, कभी रुकना नेकी, कभी चलना नेकी, कभी बुलाना नेकी। तो बहरहाल जब हिदायत हमारे पास आ जाए तो फिर देख लीजिए, अगर आपसे कोई अच्छी बात कह सकता है, आपसे अच्छी तजवीज़ कोई करा सकता है तो उससे करवाइए, आपसे अच्छी ग्रामर किसी की उससे कराइए, आपसे अच्छी तफसीर किसी की है तो आप उसकी सुना दें, आप वही काम और अच्छा कर लेंगी, बाकी कामों में फिर क्वालिटी आ जाती है और जान सौखी। वरना पता क्या है, जिनकी बात बता रही वो कहती है हर वक्त उलझी रहती हूँ, मियाँ पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, मेहमानों पे गुस्सा, क्यों? मैंने क्लास की तैयारी करनी है। 8-8 घंटे वो दिन में, हफ्ते में 2-2, 4-4 घंटे लगा के 8-8 घंटे सुन के एक एक लेक्चर लिखती थी, कहती जब से तफसीर चला दी साथ और रिकैप आ गई, मेरा वो 8-10 घंटे बच गया, बल्कि मैं इतने फोकस से बैठ के खुद सुनती हूँ और पॉइंट्स ले रही होती हूँ तो मेरा तो काम ही बट गया। और फिर भी 8 घंटे के बाद वो तो नहीं हो सकता। और आप देखिए, लफ्ज़ बलफ्ज़ आप किसी का पेश कर दें, बिलफर्ज कापी पे लिख के पढ़ दें, तासीर नहीं होती। एक ही गोली है, एक बंदा खाता है और तासीर है, दूसरा खाता है दूसरी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे खैर फूटे, खुले दिल बड़े दिल से, और दूसरी बात है वो काम कीजिए जो आपके बाद चलता रहे। और दिन ब दिन हम सब ने कमज़ोर होना है, अकेले रह जाएंगे। आज मैं मर जाऊंगी तो मेरी जगह पे कोई खड़ा होने के लिए तैयार है? मुझे अपनी ज़िंदगी में इसका फैसला करना चाहिए। तो लिहाजा ये सारी बातें हमें बताकर उस दौर की जो सुपर पावर्स हैं उसको बता दिया। फिर इसमें आप देखिए, कुव्वत पे कुव्वत की बात है ना। इस कौम का एक दावा था सूरत हामिम सजदा में, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 15 में, मन अशद मिन्ना कुव्वा। और कुव्वत को आज इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? सुपर पावर। ये सुपर पावर कौम थी, अपने आप को बड़ा करती थी। नबी ने कहा तुम्हारी कुव्वत पर मजीद कुव्वत। कौन सी कुव्वत? मादी कुव्वत? नहीं, तुम जिस मटीरियलिस्टिक अप्रोच को तरक्की कहते हो, कामयाबी कहते हो, ये मादी कुव्वत से नहीं, ये वो कुव्वत है जो तुम्हें रूहानियत देगी। तुम अल्लाह की बात मानोगे तो कुव्वत न ला कुव्वत का अगर मैं तर्जमा करूँ ना, मादी कुव्वत पर ईमानी कुव्वत। साहबा की सबसे बड़ी कुव्वत जो थी ना, वो ईमानी कुव्वत थी। मैंने बहुत सारी नियतें की और हर साल दौरे कुरान में ही करती हूँ। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ानी है, मुस्लिम हिस्ट्री। कई लोगों ने मुझे कहा, कभी मैसेजेस आते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और चंद और गिनती के सहाबा को जानते थे, हमें तो पता ही नहीं कि सहाबा इतने। तो स्पेशली जो कल के हिस्से में हमने पढ़ा ना कि फलां कपड़ा बेचता था और फलां, ये लोग कहते हैं कि सहाबा जिंदा के सामने आ गए हैं। बिलीव मी, ये सच है। हमारे जहन में सहाबा का तसव्वुर है, वो तस्बीह पकड़ कर, टोपी लेकर, मुसल्ला लेकर मस्जिद में बैठे रहते होंगे। फिर जब कभी ज़रूरत पड़ी तो उठ के मैदान जंग में भाग गए। वल्लाही ऐसा नहीं था। आज इस बेअमली ने हम मुसलमानों को बिल्कुल किसी जगह करना छोड़ा। आज अगर सहाबा होते तो किधर होते? वो स्टॉक एक्सचेंज में भी बैठे होते, वो बैंकों में भी होते, वो दुनिया का हर वो काम कर रहे होते जो ज़रूरत थी, लेकिन उसमें अल्लाह की हदों से आगे ना जाते। तभी तो फिर आज वो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हम लोगों से। तो बहरहाल, एक और भी मैंने आपको बुक पढ़ानी है किसी ज़िंदगी के मौके पे, ईमानी ताकत। क्योंकि ये यकीन की ताकत ना मिले तो सब बेकार है। आप और मैं यहाँ तो बस उतना ही पढ़ सकते हैं जितना हमारा वक्त है और जितना हमारा नसीब है, लेकिन बहरहाल इसमें हमारे अपने सीखने की बहुत सारी बातें हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि कौम इतनी स्टबन, वो कहते थे हम बड़े कामयाब हैं, तुम हमें किन कामयाबियों की बात करते हो? तो हज़रत जूद ने क्या कहा? मेरा रब सिराते मुस्तकीम पे है। वो है कि वो कह रहे हैं कि मैं जिस चीज़ की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ये सीधा रास्ता है, यही है वो चीज़ जिसके ऊपर तुम चलोगे तो कामयाब होगे। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आज के मुबल्लिग को। और जब इनके लिए आखिरी जुमले में पढ़ती ना, वो तिल का आद, अगर आप आयत 59 देखें ना तो किफ लिखा हुआ है, सादा मुसफ ज़रूर सामने रखा करें, किफ रुक जाओ, स्टॉप। ये सकता है क्या? वो तिल का आद, ऐसे लग रहा है कि पॉइंट टू थिंक पॉन्डर, ये थे आद, जहादू भी आयाती रबी हिम, जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया, वह सऊ रसूल हो, और अपने रसूल की नाफरमानी की, लेकिन देखो ज़रा उनका इंजाम क्या हुआ। तो याद रखिए, जो लोग अल्लाह की बात को नज़रअंदाज करें, अल्लाह भी उनको नज़रअंदाज कर देता है। ये जुमला लिख लीजिएगा, ये दुनिया में भी होता है, ये आखरत में तो अपनी एक्सट्रीम पे होगा। उस वक्त जब अल्लाह अपनी रहमतें बांट रहा होगा ना, वकान बिल मोमिनीन रहीमा, उस वक्त काफिर अल्लाह की रहमतों वाली लाइन में खड़े होंगे तो अल्लाह ऐसे उनको ओवरलुक कर देगा जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं है। अल्लाह की रहमत सिर्फ उन लोगों के हिस्से में होगी जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के ताबे और फरमा बरदार बनकर रहे। और अब यहाँ से एक कौम और आएगी, इसको कहते हैं इस्तेखलाफ। लिखिएगा, इस्तेखलाफ का असूल अल्लाह ने रखा हुआ है। एक कौम को हटाने के बाद दूसरी कौम को उसकी जगह पर रहने की जगह दे देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब कोई चीज़ अपना काम नहीं करती तो थोड़े दिन के बाद आप इस्तेखलाफ के असूल पे उस चॉपर या उस मशीन या उस ब्लेंडर ग्राइंडर को अपने वर्कटॉप से उठाकर पहले तो अलमारी में घुसाते हैं कि शायद मौजज़ाना तौर पर अंदर पड़ा पड़ा ये ठीक हो जाए। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो अलमारी भी भर जाती, फिर उठाकर आप पीछे पेंट्री में रखते हैं कि शायद यहाँ कोई तुक्का चल जाए। फिर उसके बाद आप अपने गैराज में, और कुछ 4-6 साल बाद जंग से भरी, अब कहते हैं लगता है अब ये ठीक नहीं होनी, अब इसको फेंक ही दें। ये हमारा प्यारा सा प्यार देसी कल्चर है, हम चीज़ों को नहीं छोड़ते, बंदे ज़ाया कर देते हैं, चीज़ें नहीं हम ज़ाया करते। लेकिन बहरहाल इसी इस्तेख़लाफ़ के कुलिये के तहत, जैसे बच्चा एक इम्तिहान के बाद अगले में, अगले के बाद दूसरे में आता है ना, तो इस दुनिया में खैर और शर हमेशा चलता है। आज़ादी दे दी, आपको भी दी, मुझे भी दे दी, शर ले लो खैर ले लो, लेकिन उसके बाद नहीं आते तो फिर अगली कौम आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले और पिछले, तर और खुश्क इकट्ठे होकर मेरे बंदों में से, यानी बेसिकली ये हदीस अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, और ऐसी हदीस को हम क्या कहते हैं, हदीसे कुदसी कहते हैं, यानी ये और भी स्ट्रॉन्ग हदीस होती है। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुनाह करने वाले हो सिवाय इसके जिसे मैं महफूज रखूँ। हिदायत उसको ही मिलेगी जिसको अल्लाह बचा लेगा। फिर उसके बाद आपने क्या फरमाया, इसलिए मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम में से जो ये यकीन रखे कि मैं बख्शने की कुदरत रखता हूँ, फिर वो मुझसे मेरी कुदरत के वास्ते से बख्शिश की दुआ करे। यानी जब मैं किसी को बख्शने की बात करता हूँ तो क्या है कि वो मुझसे दरख्वास्त करे तो मैं इसकी मग़फ़रत कर दूंगा। तुम सब राह भूले हुए हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूँ, चुनाचे मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तुम सब फ़कीर यानी मुख्ताज और मुफलिस हो सिवाय इसके जिसे मैं गनी कर दूं, लिहाजा मुझसे मांगो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। अगर तुम्हारे जिंदा, फौत शुदा, अगले पिछले, यानी एक एक बंदा मुराद है ज़िंदगी में, तर और खुश्क इकट्ठे होकर मेरे बंदों में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान जैसे दिल भले बन जाए, तो इससे मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होगा। और अगर वो सब इकट्ठे होकर मेरे बंदों में से सबसे ज़्यादा बदनसीब, बदकार बंदे जैसे दिल वाले बन जाएं, इससे मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के जितनी भी कमी नहीं आएगी। अगर तुम्हारे जिंदा और तुम्हारे फौतशुदा, पहले और पिछले, अगले यानी पिछले, तर और खुश्क इकट्ठे होकर मुझसे सवाल करें, और हर मांगने वाला वो सब कुछ मांग ले जिसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश करता है। सोचिए, जब बंदे को ख्वाहिश का मौका दिया जाए तो वो थोड़ा करेगा, कोई कमी छोड़ेगा? तो इससे मेरी बादशाहत, और सब की मांग मैं पूरी भी कर दूं, तो इससे मेरी बादशाहत में इतनी ही कमी आएगी जैसे कुछ समंदर के किनारे, सोचिए, पर जाए और इसमें एक सुई डिबो कर निकाल ले, क्योंकि मैं सखी हूँ और अजमतों वाला हूँ। मेरी अता कलाम करना है, जब मैं किसी चीज़ का इरादा करूँ तो इसे सिर्फ ये कहता हूँ, कुन हो जा, फयकुन वो हो जाती है। ये इब्ने माजा की रिवायत 4257 है। तो लिहाजा अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करते हैं, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए अल्लाह की इबादत करनी भी है और इसकी दावत भी देनी है, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला ही से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, शिर्क करने वालों से बेजार होना है और अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। तो अल्लाह ताला के कानून इस्तेखलाफ के नतीजे में एक और कौम उसी पिछली कौम की ऑफ स्प्रिंग्स, यानी पिछलों के अच्छे अगलों के बुरे वाला माहौल जहन में रखिए, उसका तذکرہ अल्लाह ताला ने इधर फरमा दिया कि ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने अपने दौर में चुना था, लेकिन ये उस बात को भूल गए। आइए देखते हैं रुकू नंबर 61 से 68 तक। टॉपिक है अल्लाह की इबादत की दावत कर देना है। वह इला समूद ना खाखुम सालेहा, और कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, उसने कहा कि मेरी कौम, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसी ने इस ज़मीन में तुम्हें बसाया है, बस तुम इससे माफ़ी तलब करो और इसकी तरफ रजू करो, बेशक मेरा रब करीब और दुआओं का कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा है, सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। नोट करिए, इस कुरान पे आने से पहले लोगों ने आपसे भी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन क्या तू हमें इनकी इबादत से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए? आज भी ये इशू है ना, हमें तो इस दीन में हैरान कुन हद तक शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। उसने जवाब दिया, मेरी कौम के लोगों, ज़रा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और इसने मुझे अपने पास की रहमत अता की, और फिर अगर मैंने इसकी नाफरमानी कर दी, तो कौन है जो इसके मुकाबले में मेरी मदद करे? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। और ऐ मेरी कौम वालों, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है, अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती भी छोड़ दो और इसे किसी तरह की ईजा न पहुंचाओ वरना फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। फिर भी इन लोगों ने ऊंटनी के पांव काट डाले। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम अपने घरों में 3 दिन तक तो रह लो, ये वादा झूठा नहीं। फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह को और इन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा रब नहायत तवाना और गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर झिंघाड़ ने आ दबोचा, फिर वो अपने घरों में उंधे पड़े हुए रह गए, ऐसे कि गोया वो वहां कभी आबाद ही न थे। आगाह रहो कि कौमे समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुन लो इन समूदियों पर फिटकार है। क्या यही अंदाज नहीं था पिछली कौम का भी? क्या पता चला कि जब कोई कौम अल्लाह के नबी, जिसको डायरेक्ट लोगों की हिदायत के लिए भेजा होता है, उसका इनकार करती है, तो फिर अल्लाह को गजब आता है। आप देखिए कि जैसे करने वैसे भरने, बिल्कुल इसी तरह से आपको मुझे अपनी जिंदगी में ये असूल बनाना है कि आज के दौर में अगर कोई नबी होता तो हमारा उसके साथ क्या मामला होता। आज उम्मत मुस्लिम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अमल नहीं करती, मिशन नहीं बनाती। गुजरे हुए रसूल की बात को लेकर उसके जश्न मनाना, जश्न आमद रसूल कहना बहुत आसान है, लेकिन इन कौमों से सीखिए। और याद रखिए, जिस कौम के इस नबी आ गया और नबी की बात ना मानी, वो कौम तबाह होगी। हम आज इसीलिए बचे हुए हैं कि हमारे अंदर वही कुछ है जो उनमें था। और बल्कि आप पढ़ नहीं रहे, हर कौम में जो अलग अलग फर्दन फर्दन खराबी थी ना, वो आज हमारी पूरी कौम में सारी इकट्ठी हैं। अगर अल्लाह की वही सुन्नत हरकत में आ जाए ना, तो हम तो तूफानों में भी, सैलाबों में भी, जलजलों में भी, चिंगाड़ों में भी ख़त्म कर करा चुके होते, सब ख़त्म होता। लेकिन चूंकि अल्लाह ने नबी की उम्मत को आखिर तक लेके चलना है और अल्लाह के नबी की दुआ है, फिर इन्होंने ऊँटनी मांगी। हम भी मांगते हैं, अल्लाह कोई काम ले ले, अल्लाह कोई नेमत दे दे, अल्लाह को बड़ा काम ले ले। जब अल्लाह उसका बिल भेजता, कहते सॉरी इतनी महंगी तो नहीं चाहिए थी, ये मेरे से तो नहीं हो सकता, ये नहीं और वो नहीं और इस तरह की कहानी। तो लिहाजा अपने लिए अमल के रवैये नोट करते हैं। अल्लाह की इबादत की दावत देनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की दावत देनी है, अल्लाह की तरफ पलटने की भी दावत देनी है, रब का कुफर नहीं करना, जुल्म नहीं करना, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए खौफ खाना है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा ले।